اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. چلیے، اب انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہم سب ایکسائٹمنٹ چھوڑ دیں گے، جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ کام کریں گے. اور وہ مقصد کیا ہے؟ کہ آج ہم یہاں سے کوئی ایک ایسی بات سیکھ کر جائیں جو ہمارے لیے پوری زندگی کافی ہو. آپ سب بیٹھ کر اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ آج کا دن، آج کی ڈیٹ یہ یادگار بن جائے. امریکہ میں ایک دن مناتے ہیں جس کو میموریل ڈے کہتے ہیں. دعا کریں یہ آج کا دن آپ کی میری زندگی کا میموریل ڈے بن جائے. وہ کوئی ایک دن ہوتا ہے، وہ ایک لمحہ ہوتا ہے. تو زندگی میں کچھ لمحے ہوتے تو وہ لمحے ہیں، لیکن وہ صدیوں پہ محیط ہو جاتے ہیں. اللہ کرے آج کا لمحہ ایسا ہی ہو. کل رات کسی نے مجھے ایک سٹیکر بھیجا، تو دعا تھی اس میں، میں دیکھتی ہوں اور پھر بتاتی ہوں وہ کیا تھی، پھر آپ کو سمجھ بھی شاید میری بات زیادہ آ جائے. کسی نے مجھے ایک سٹیکر بھیجا کہ جیتے رہو عزت اور عافیت سے ہزاروں سال. ہم بھی ایسے بڑے سٹیکرز بھیجتے تھے پہلے بھی. تو میں نے اس کا جواب ان کو پوچھا، ہاؤ از اٹ پاسبل، ہزاروں سال کیسے کوئی جیے گا؟ تو پھر ان کا جواب تھا، اٹ از پاسبل، یو کین لیو ان دی ہارٹس آف پیپل ٹل لانگ ٹائم. ایسے ہی ہے نا، کیونکہ رہنے کی بہترین جگہ لوگوں کے دل ہے. تو آئیے شروع کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ہماری سیریز کا مین تھیم کیا چل رہا ہے؟ زہر الفساد فی البر والبحر، خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا. اس سے کیا مراد ہے؟ سورۃ نحل کی یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا کہ یہ دنیا گندی ہو گئی ہے، پلیوشن آ گیا. فساد کہتے ہیں بگاڑ کو، اردو میں ہم بہت بولتے ہیں لفظ فسادات، جھگڑے، گولیاں چلنا. وہ فساد کی ایک ظاہری شکل ہے. لکھ لیں اصل فساد کیا ہے. نمبر ایک، مخلوق کا تعلق خالق سے ٹوٹ جائے. اللہ نے اپنے بندوں کو بڑے پیار سے پیدا کیا. ہر روز کم سے کم 17 بار ہم ایک عہد کرتے ہیں، ایاک نعبد ویاک نستعین. اس کو میں اگر آپ کی میری زبان میں کہوں نا بڑے پیار سے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں. دوسرے لفظوں میں اس کو کہیے، اللہ اکبر انی اصغر. اگر دنیا میں کوئی رشتہ سب سے خوبصورت رشتہ کہلاتا ہے تو وہ مخلوق اور خالق کا رشتہ. اس کے بعد پھر ماں اور بچہ. یہ جو ماں کے دل میں اللہ نے پیار ڈالا ہے نا، یہ وہی اس پیار کا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے. پہلے تو اپنے آپ کو سامنے رکھیے اور خود کو کہیں، اللہ مجھ سے پیار کرتا ہے. اور وہ معروف روایات جس کی سند میں کچھ اختلاف ہے، کہ اللہ اپنے بندے سے 70 سے بھی زائد ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، یہ بھی ایک تمثیل ہے. آپ اس کو حدیث نہ کہیں، صرف اپنے انالیسس کے لیے، اپنی سمجھ کے لیے، محسوس کرنے کے لیے رکھیے. اور میں بدگمانی نہیں کر رہی، لیکن اگر تھوڑی سی سائیکالوجی پڑھی ہے تو اس کی بنیاد پہ کہہ سکتی ہوں کہ اس وقت آپ میں سے جو بچیاں جس ایج میں، اس میں نہیں پتہ ہوتا کہ ماؤں سے کتنا پیار ہے. بس اگر میں آپ سے پوچھوں، بیٹا آپ اپنی امی سے پیار کرتی ہیں؟ آپ وہ جذباتیت کے ساتھ نہیں بولیں گے جو میں یہ پوچھوں کہ آپ اپنی دوست سے پیار کرتی ہیں. اپنی سہیلی زیادہ پیاری لگتی ہے کہ ماں؟ لیکن ڈونٹ وری، ایسے ہی ہوتا ہے. یہ پیار آپ کو تب پتہ چلے گا جب اپنی ماں کا گھر چھوڑ جائیں گی، یا پھر آپ کی ماں آپ کو چھوڑ جائے گی. دنیا میں جو نظر آنے والا پیار ہے نا، وہ ماں اور بچے کا پیار ہے، جس میں کوئی جواب میں چیز ملنے کی امید بھی نہ ہو، پھر بھی ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے. ہم اپنے ماں باپ سے پیار اتنا نہیں کرتے جتنا ہم اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں. یہی چیز ہمارے ماں باپ کی مجبوری ہے. وہ اب ہمارے نانی نانا کے ساتھ وہ پیار کا اظہار نہیں کرتے یا محسوس نہیں کرتے ہوں گے جو وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں. تو سب سے پہلا رشتہ اللہ کے ساتھ بندوں کا، یہ جو سورت الفاتحہ ہر روز نماز کے شروع میں پڑھی جاتی ہے نا، لازمی حصہ ہے. لا صلاۃ الا لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب، اس شخص کی نماز ہی قبول نہیں ہے جس نے اپنی نماز میں سورت الفاتحہ نہیں پڑھی. اور وہ کیا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، ذرا سا محسوس کریں، آج صبح فجر کی نماز کس کس نے پڑھی تھی؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو برکت ہے. اور جنہوں نے نہیں پڑھی ان کی ظاہر ہے کوئی مجبوری ہوگی، کیونکہ نماز کے بغیر تو انسان کا دن شروع ہی نہیں ہوتا نا. ہم صبح اٹھ کے اگر فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، دیٹ از فرسٹ وکٹری اگینسٹ ڈیول. فجر کبھی نہ قضا کریں، کیونکہ شیطان اگر صبح ہی جیت گیا نا آپ سے، تو پھر آپ کو پتہ کیا ہوگا. حدیث سنی بھی ہے؟ سناؤں، کیونکہ میں آپ سے بڑی بڑی باتیں کیوں کروں. پہلے ٹاپک اتنا بڑا ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے سر پہ کسی نے چھاج رکھ دیا، اور معصوم جانوں کو میں یہ موضوع دے کے جاؤں. لیکن اصل بات کیا ہے، جب ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جڑتا ہے تو پھر ہمیں سمجھ آتی ہے کہ ہم کوئی بیکار چیز نہیں ہیں. اللہ نے انسان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کے لیے آتا ہے نا، اللہ نے ان کو اپنے ہاتھ سے بنایا. خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا. اور وہ اردو میں کہتے ہیں نا کہ سارا جہاں تیرے لیے اور تو میرے لیے. تو پہلی بات جس پہ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت، اس دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجنے سے پہلے ایک وعدہ لیا تھا، الستُ بربکم. سورۃ الاعراف جب آپ کبھی پڑھیں گی تفصیل سے انشاءاللہ، تو اس میں یہ وعدہ آتا ہے. ہم سب روحوں کی شکل میں تھے، ہماری روحیں تھیں بس. اور اس روحانی فیز میں جب ہم تھے تو ہم بات کر رہے تھے کہ فساد کب پھیلتا ہے. آج تین چیزیں آپ سیکھیں گی. پہلی صورت کیا ہے کہ جب بندے کو یہ نہ پتہ چلے کہ اس کا اپنے مالک کے ساتھ تعلق کیسا ہے. اور تعلق کیسا ہوتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں ابھی. جب ہم اپنے گھر میں اپنے ارد گرد چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک خیال آتا ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ چیز میری ہے. مثلا یہ چیز میری کیسے ہے، یہ میرا سیل فون ہے، تو ایک اون کرنے کی کیفیت ہوتی. مائی لیپ ٹاپ، مائی واچ، میری گھڑی، میرا کمرہ. یہ جو لفظ میرا ہے نا، جو میرے کا لفظ ہے نا، یہ ہے وہ اون کرنے کی فیلنگ. آپ اس اپنی فیلنگز کو دنیا کی ہر وہ چیز جو اس وقت آپ کے پاس ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھ لیں. انسان کو لفظ میرا بہت پیارا ہوتا ہے. آپ کا لیپ ٹاپ ہے، مجھے کیا لگے؟ آپ کے پاس اچھی سی گھڑی ہے تو مجھے کیا لگے؟ مجھے کیا اچھا لگے گا جو میرا ہوگا. تو اللہ آپ کو اور مجھے کہتا ہے میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. آپ کی ایج میں مجھے فیل ہوتا ہے، آج میں یوتھ میں بہت کام کرتی ہوں الحمدللہ، مجھے اچھا لگتا ہے بات کرنا، مجھے لگتا ہے ڈپریشن ہے، لونلینس ہے. ان کو ایسے لگتا ہے کہ ہم بیکار ہیں، ان کو ایسے لگتا ہے کوئی ہماری بات نہیں سنتا، ان کو ایسے محسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کہ ہم ورتھ لیس ہیں، جسٹ ٹائم کل کر رہے ہیں، جسٹ وانڈر بلائنڈلی. نیٹ دیکھنے بیٹھے، نیٹ کھولا تو پتہ نہیں کدھر سے کدھر چلے گئے، یہ کھول وہ کھول وہ کھول. پھر آپ کو ایسے لگتا ہے میرے ورک کی کوئی ورتھ نہیں ہے، پرائس لیس لگتی ہیں چیزیں. اور کبھی کبھی اس عمر میں جس میں اس وقت آپ ہیں اکثریت، اور آپ کی ٹیچر سے معذرت کے ساتھ، لیکن آپ کو بھی یاد آئے گا، جب آپ اپنی زندگی کو کوئی مقصد نہیں دیتے تو آپ ورتھ لیس ہو جاتے ہیں. آج آپ کے پاس ہم نے یہاں آنا تھا، لاہور سے آئے ہیں ہم لوگ، کل رات سے غم پڑا ہوا تھا کہ اللہ صبح فوگ نہ ہو، گاڑی کا کوئی ایشو نہ بن جائے، بارش نہ ہو جائے، اور وقت پہ ہم پہنچ سکے. کمٹمنٹ، صبح کا لیکچر، اور وہ بھی صبح صبح. اس ساری فکر اور تفکر نے ہمیں یہاں پہنچا دیا. اور آپ سوچ کے دیکھیے کہ جس وقت ہم یہاں پہنچ گئے، مجھے یقین ہے لاہور میں سونے والے اکثر لوگ ابھی سو ہی رہے ہوں گے. وہ کیوں نہ اٹھے؟ جو ان کے پاس کوئی گول نہیں تھا. تو جب ہمارے پاس کوئی گول نہیں ہوتا تو کوئی رول بھی پلے نہیں ہوتا. آور گولز کنورٹس ٹو آور رولز. ہم جتنا بڑا ٹارگٹ رکھ لیتے ہیں نا، ہم اتنے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. مجھے کیوں یاد آ گئی ایک چیز، آپ کے پاس مجھے نہیں پتا، میں پوچھتی ابھی آپ سے، لیکن جب میں پڑھتی تھی، اسٹوڈنٹ تھی، تو हमारे एग्जाम्स जब होते थे तो 3 घंटे का पेपर होता था, अभी भी 3 का ही होता है अलहम्दुलिल्लाह। टोटल 8 सवाल होते थे जिनमें से 5 करने होते थे और पहला सवाल कंपलसरी होता था। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही अभी या कुछ चेंज हुआ? और ऑफ कोर्स आपका तो ये कॉलेज डिफरेंट टाइप का है ना, मेरा ख्याल है कुछ टेक्नोलॉजी से बेस्ड है, लेकिन अमूमन जो एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद शुरू के वक्त में हम रिलैक्स रिलैक्स आहिस्ता आहिस्ता लिख रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, वो जो आखिरी आधा घंटा रहता है उस वक्त स्पीड क्या होती है? बस दैट इज योर गोल। शुरू में मैं क्या करती थी, पहले सवाल पे मेरे लिए 1 घंटा सवाल लगा देती थी और उसके बाद फिर आखिर में जब वो अनाउंस करते थे 1 आवर लेफ्ट 45 मिनट लेफ्ट, तो दिल बैठता था। अब क्या, फिर हाथ ऐसे से, शुरू में शायद 4 सफ़े लिखे होंगे 2 घंटे में, तो आखिरी आधे पौने घंटे में 7-8 सफ़े लिख देते थे। ऐसे ही होता है ना, वक्त कम है मुकाबला सख्त। तो 3 चीज़ों में से पहली चीज़ जिस पे मैं आज आपके साथ थोड़ी सी बात करके आपको छोड़ूंगी, हमारा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक। हमें नहीं पता हम कितने कीमती हैं, अल्लाह ने हमें कितने प्यार से बनाया। लक़द खलक़ना लिंसान फ़ी अहसनी तक़वीम सुम्मा रददनाहु अस्फला साफ़िलीन। एक जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं वलकद करमना बनी आदम, मैंने बनी आदम को बड़ी इज्जत दी। ये आदम और इबलीस का किस्सा था, सबने सुना हुआ है ना, ऐसे ही है ना, किसको सजदा किसने किया? आदम को सबने सजदा किया है ना, उस जुदूली आदम फसजदू इल्ला इबलीस। तो आदम को सजदा क्यों करवाया? आज तो सजदा ही जायज़ ही नहीं है किसी को करना, नहीं ना कर सकते किसी को सजदा, किसी जिंदा को, किसी मुर्दा को, शौहर को, बीवी, बच्चे, माँ बाप को नहीं कर सकते ना। तो उस दिन आदम अलैहिस्सलाम को एक सिंबल बनाकर अल्लाह ने क्यों सजदा करवाया? ये ऐसे ही है जैसे आज हमें कहा जाता है खाना काबा की तरफ मुंह करके सजदा करो, तो क्या हम खाना काबा को सजदा करते हैं, किबले को सजदा करते हैं? नहीं। कुछ हिंदू लोग कहते हैं कि आप लोग खुद भी तो एक पत्थरों के घर को पूजते हैं, तो अगर हम पत्थर का बुत बना लेते हैं तो क्या? तो उसका जवाब क्या है? फलयाबुदु रब्ब हाज़ल बैत, बस चाहिए कि इबादत करो इस घर के रब की। ये नहीं कहा कि फल या बदु हाजल बैत, क्लैरिटी हो गई। हम जिस तरह आज अल्लाह के हुक्म पे किबले की तरफ सजदा करते हैं, उस वक्त फरिश्तों ने किबले की जगह पे आदम को रख लिया, सजदा तो अल्लाह के हुक्म पे था, ठीक है। आदम अलैहिस्सलाम को इतनी इज्जत क्यों मिली? और वो आपके बाप थे, हम सब आदम के बच्चे हैं। अल्लाह दुनिया को ये दिखाना चाहता था, फरिश्तों को ये बताना चाहता था कि इस दुनिया का कमांड, इस दुनिया का कंट्रोल और इस दुनिया को बनाने का मेन मकसद इस इंसान को भेजना है। वइस क़ाला रब्बुक लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, जब अल्लाह ताला ने कहा कि फरिश्तों से कहा कि मैं इंसान को इस दुनिया में खलीफा बनाने वाला हूँ, वो मेरे मकसद की तकमील करेगा। तो दूसरी बात पे आ जाइए, फसाद कब फैलता है? जब बंदे का रब से ताल्लुक टूटता है, और दूसरी चीज जब उसको अपना पर्पस ऑफ लाइफ नहीं पता, मकसद हयात नहीं पता, मैं क्यों भेजा गया, मैं क्यों यहाँ आया, मैंने यहाँ क्या करना है। क्या दुनिया में कोई काम भी आप दिन में छोटे छोटे काम बगैर मकसद के करते हैं? आप हफ्ते में मेरा ख्याल 5 या 6 दिन इस कॉलेज में आते होंगे ना, आते हैं ना, किसी मकसद से आते हैं कि नहीं? फ्रिज खोलते हैं कोई मकसद होता है? बेड से उतर कर सीधे वॉशरूम की तरफ चलते हैं कोई मकसद होता है? हम तो एक कागज़ नहीं पलटते मकसद के बगैर। तो ये कैसे हो सकता है कि इस दुनिया में अल्लाह ने भेज दिया तो आपका कोई मकसद ही ना हो? अफहसिब तो मन्नमा खलकनाकुमा बसा वन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। सूरत मोमिनून बिल्कुल 18th पारे के कह लीजिए कि शुरू पे ये सूरत है, तो अल्लाह ताला उसके आखिरी रुकू में एक सवाल पूछते हैं कि अफ हसिब तुम डिड यू थिंक, क्या तुमने ये सोचा? अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या हमने तुम्हें अबस पैदा किया, पर्पसलेस पैदा किया, तुम्हारी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, खाओगे पियोगे चरोगे चुगोगे और चले जाओगे? नहीं, ये ज्यादती है, इट्स नॉट फेयर। छोटी छोटी चीज़ों के इतने बड़े मकसद हों और इतनी बड़ी दुनिया का ये मकसद, आप भी तो कभी सोचेंगे ना। हर रोज सुबह होती है, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात, और फिर अगला दिन शुरू हो जाता है। हम रोज सुबह उठते हैं और रात को फिर सो जाते हैं। खाना खाते हैं, बहुत खुश, पेट भर गया, हालांकि पेट भर के नहीं खाना चाहिए था, खा लिया। 4-5-6 घंटे बाद फिर खाली, साफ सुथरे कपड़े पहने, नहा धो के बड़े खुश हैं। एक दिन के बाद वही गंदे हो गए, कंघी की। यानी आप देखिए रोज हमारे साथ क्या हो रहा है, हम जो कुछ कर रहे हैं वो कुछ घंटों के बाद निल हो जाता है। हमारी हर कोशिश बेकार है, क्यों? अल्लाह ताला ने कहा कि मा इंदल्लाही बाक, मा इंदकुम, जो तुम्हारे पास है यनफुत, फना हो जाएगा, नफदा, हाँ जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा। तो दूसरी बात जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं वो क्या है कि हमारा इस दुनिया में भेजे जाने का मकसद क्या है। जब तक आप और मैं उस मकसद को नहीं समझेंगे, हम वो काम भी नहीं करेंगे। सीधी सी बात है, आपके पेरेंट्स आपको इस कॉलेज में भेज रहे हैं, फीस भी होगी यकीनन, रिक्शा, टैक्सी, वैगन, गाड़ी, कोई एफर्ट तो होगी ना, कुछ ना कुछ आपको बुक्स भी लेके देते होंगे। तो ये क्यों कर रहे हैं वो, आपको नहीं पता। तो क्या आप इस कॉलेज में आके कुछ हासिल करेंगी? नहीं करेंगी। आप कहेंगे आई डोंट नो व्हाई दे आर सेंडिंग मी हेयर, मुझे नहीं पता मेरे अब्बी अब्बू ने मुझे इधर क्यों भेज दिया। आप नहीं करेंगे। सुबह आपके अब्बू उठकर काम पे जाते हैं, क्यों जाते हैं? आप में से किसी के भाई जाते होंगे, कुछ के बेटे जाते होंगे, आप में से कुछ के हस्बैंड जाते होंगे ना। ये रोज सुबह उठ के हमारे घरों के मर्द बेचारे सर्दी गर्मी धुंध उठ के क्यों जाते हैं? उनका नहीं दिल करता वो सोए, उनको सर्दी नहीं लगती, और उनका नहीं दिल करता कि हम मजा करें बस, खूब गर्म कमरा, साथ हम मूँगफली खाएं, साथ हम कोई टीवी पे मज़े की चीज़ देखें। लेकिन वो नहीं कर सकते। एक मजदूर सुबह उठ के घर से निकलता है और सड़क के किनारे आके बैठ जाता है और दुआ कर रहा होता है कि अल्लाह मुझे काम मिल जाए, दिहाड़ी बन जाए। कोई उसको कहता है भाई काम करना है, उसकी आंखों में एक चमक आती है। वो ये क्यों नहीं कहता कि मैंने नहीं करना, क्योंकि उसको पता है कि घर जाने से पहले रात को मैंने 5-6 लोगों का राशन लेके जाना है। जिसके सर पे जितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है वो उतना एक्टिव होता है। आपकी मदर्स रोज 4-5 लोगों का खाना बनाती हैं, बना लेती हैं, तो जिस दिन रात को घर में दावत हो, 20 लोगों का खाना पकाना हो, तो उस दिन घर में ज़्यादा शोर नहीं होता, अभी जल्दी करो, घर साफ करना है, ये करना है, वो करना है। तो इन सारी बातों को लाइए बीच में, तो क्या पता चला कि अल्लाह सुभान व तआला ने हमें इस दुनिया में किसी मकसद के साथ भेजा है। अभी बात करूँगी क्या है, पहले समझ लें आप, ठीक है? तो आज हमने मकसद हयात भी ढूंढना है। ये कैसे हो सकता है कि सुबह होती है, शाम होती है और ज़िंदगी यूं ही तमाम होती है? कोई घन चक्कर थोड़ी है, कोई हम कोल्लू के बैल थोड़ी है कि यूं घूम रहे हैं और एक दिन थक के गिरेंगे और मिट्टी में चले जाएंगे। ये तो बड़ी बेकार बात, ये तो ज्यादती है। फिर इतनी बड़ी प्यारी खूबसूरत दुनिया, सूरज चांद सितारे, ये नहीं थे बनने चाहिए। और तीसरी चीज़ जो हम इसमें देख सकते हैं वो क्या है, इंसानों के साथ ताल्लुकात। ये हैं तीन चीज़ें, ज़हर अल फसाद फिल बर्री वल बहर। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़मीन में फसाद फैल गया। कैसे? नंबर एक, बंदों ने मेरे साथ अपने ताल्लुक को समझा नहीं है। दूसरी बात, मकसद हयात नहीं समझा, दे डोंट नो देयर पर्पज ऑफ लाइफ। और तीसरी बात है कि आपस में इंसानों के साथ खुश नहीं है, रिश्तों में फूट है, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, भाई बहनों की विरासत खा गए, उधर तलाकें हो रही हैं, उधर रिश्ते टूट रहे हैं, उधर खानदानों में झगड़े हैं, साथ बैठे हुए लेग पुलिंग कर रहे हैं, एक ऑफिस में काम करने वाले एक दूसरे के खिलाफ हैं, सियासतदान जो उनके खिलाफ अवाम है, सदर को लोग बुरा कहते, वज़ीर आज़म को लोग बुरा कहते, वो लोगों को बुरा कहते, आने वाले जाने वालों को कहते वो लूट के खा गए, जो नए आते हैं उन पर लोग तनकीद करते। लगते क्या हो गया तुम्हें, तुमने मेरी इस दुनिया को इतना गंदा कर दिया। देखिए आप ब्रांड न्यू घर बनाओ, आपका साफ सुथरा खूबसूरत, आपने पर्दे भी लाइट कलर के लगवा लिए, कारपेट भी बहुत ही लाइट फोन है, सफ़ेद तो मैं यहाँ कह नहीं सकती क्योंकि चंद दिन बाद वो स्किन हो जाएगा, इतनी मट्टी होगी बाहर से। खैर, आपका सजा सजाया घर, आप कहते हैं हाउस वार्मिंग पार्टी करते हैं, फैमिली को बुलाते हैं जिन्हें नया घर बनाया तो इसकी खुशी में, और वो फिर आए और उनके बच्चे आपके घर के पर्दों के साथ सालन वाले हाथ पोंछ रहे हैं, कारपेट पे जगह जगह चावल गिरे हैं, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? दोबारा बुलाएंगे उनको? नहीं बुलाएंगे। आपकी नई कॉपी और आपकी छोटी भाई बहन उसमें लाइनें लगा दे, अच्छी लगेगी वो आपको? झगड़े क्यों होते हैं वो? पहले हम मांगते हैं अल्लाह बहन दे दे, बहन दे दे, फिर वो छोटी सी बहन आती है, फिर हम कहते हैं ये मेरी कापियाँ फाड़ती है, इसने मेरे मेकअप को ख़राब कर दिया है, क्या पता चला कि हम इसमें भी कमजोर हैं। याद रखिए, हम सब जन्नत की तमन्ना करते हैं ना, जन्नत 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 में क्या होगा, वहाँ बाग हैं, वहाँ दूध की नहरें हैं, वहाँ सोने चांदी के जेवरात हैं। ये सब भी है, जन्नत का सबसे खूबसूरत तोहफा वहाँ रहने वाले इंसान है। ला यस्मऊन फीहा लग्वुन, लग बातें नहीं सुनेंगे। जन्नती एक दूसरे को ताने नहीं देंगे, जन्नत की सासें बहुओं को ताने नहीं देंगी, जन्नत के शौहर अपनी बीवियों को गालियाँ नहीं देंगे, ऊंची नहीं बोलेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे। वहाँ लोग एक दूसरे से क्या होगा, कालू सलामन सलामा, वहाँ स्माइल होगा। अफसोस के साथ कहती हूँ कि हम जब बाहर की दुनिया से अपने मुल्कों का रुख करते हैं, जैसे इन्होंने आपको बताया और मैं भी आपको बताऊँ कि मैं फिलहाल पाकिस्तान में नहीं रहती, मैं आजकल कहीं पता नहीं कहाँ रहती हूँ, लेकिन यहाँ नहीं होती। जब यहाँ नहीं होती तो फिर मैं किधर कैसे क्या है, बस ये समझ ले अपना मुल्क बड़ा ज़्यादा था। हम बाहर वालों को पाकिस्तान से बहुत प्यार है। वो किसी ने कहा ना कि तुम्हें अपने मुल्क से मोहब्बत करनी है तो इधर से बाहर चले जाओ, क्योंकि दूर जाकर कदर आती है। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली कुछ चीज़ों को देखते हैं, इधर मज़े तो बहुत हैं, प्यार भी, अच्छी चीज़ें आते हैं तो जाने को दिल भी नहीं करता, जितनी मर्जी मट्टी हो, जितनी मर्जी मक्खियाँ हो। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा चुभती है वो क्या है, कि यहाँ अखलाकियात बिगड़ रही हैं। चले ज़ाहरी पोल्यूशन, गंदगी, कचरा, ये तो है ही, नाकाबिले बर्दाश्त है। इतना प्यारा घर है आपका और बाहर सड़क टूटी हुई है, आपके घर के बिल्कुल साथ वाले खाली प्लॉट में कचरा, बू, आपको बू नहीं आती? आपको नहीं पता कि अगर आपने 2 करोड़ लगाकर घर बना लिया है तो 10,000 से 1 लाख लगाकर अपने सामने की सड़क भी बना लें? और हर घर जब अपनी सड़क बनाएगा तो फिर एहतियात भी होगी। कचरा उठाना क्या मुश्किल है, हर घर वाले अगर 500-500 रुपये देकर एक बंदा रख ले और वो रोज़ वहाँ से कचरा उठा दे तो हमारा मुल्क साफ हो जाता है। लेकिन हम यूज्ड टू हो गए, हमारी इतनी बड़ी बड़ी कोठियाँ और हवेलियाँ, वो तंग गलियों में से हमारी गाड़ियाँ भी नहीं गुजरती, अब चले जाते हैं। क्या पता चला, हम इस दुनिया को गंदा कर चुके हैं। जैसे हमारे घर में कोई गंदगी डाल जाए और हमारी चीज़ों को ख़राब कर दे तो हमें गुस्सा आएगा ना, तो अल्लाह कहते हैं ज़हर अल फसाद दुफिल बर्री वल बहर, खुश्की और तरी में फसाद फैल गया। अल्लाह कहते हैं इंसानों ने मेरी दुनिया को गंदा कर दिया, इंसानों ने मेरी इस दुनिया को बिगाड़ दिया है, ख़राब कर दिया है। कैसे बिगाड़ दिया है, कैसे ख़राब कर दिया है, ना अल्लाह से ताल्लुक़ है भी तो कमज़ोर। दिन में 17 बार एक बंदा सूरत अल फातिहा पढ़े और फिर उसको ना पता चले कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का क्या मतलब है, सारा शुक्र, सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए। क्या आपने जब फजर की नमाज में सूरत अल फातिहा पढ़ी थी तो आपका दिल उस वक़्त अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के शुक्र से भरा हुआ था? जब भी कभी आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो क्या आपका दिल खिल रहा था? देखिए ना, किसी ने आपको पानी का ग्लास दिया और आपको सख्त प्यास लगी थी, हलक छिल रहा था, जो ही पानी का वो घूंट गले में जाएगा तो गला तो नरम होगा लेकिन उस देने वाले के लिए शुक्रगुजारी होगी। आपने सुना होगा ना किस्सा, एक बादशाह था और सफ़र में अपने लोगों से बिछड़ गया, फिर उसको बड़ी प्यास लगी तो एक झोंपड़े वाले के पास गया, कहने लगा मुझे पानी दे दो एक गिलास। कहा मुझे क्या दोगे? कहा अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा। उसने दे दी। कहा अच्छा पिला दे, तो पानी पिलाना क्या मुश्किल है। थोड़ी देर बाद उसको हाजत हुई, कहने लगा कि मुझे पेशाब करना है, मुझे इजाज़त दे दो मैं तुम्हारे घर में कर लूँ। उसने कहा मुझे क्या दोगे? कहा अपनी आधी सल्तनत दे दूंगा। तो उसने कहा ओ बादशाह, तेरी पूरी सल्तनत की वर्थ सिर्फ पानी का एक गिलास है कि जिसको पहले पीने के लिए तूने मुझे आधी दे दी, तो फिर अपने जिस्म से निकालने के लिए आधी दे दी, तो मुझे तेरी सल्तनत से कोई सरोकार नहीं, तू ये रख, मैंने तुझे ऐसे ही दिया। ये है वो चीज़ जिसको अगर हम समझ जाएं तो हमारी नमाजें जिंदा हो जाएं। शुक्र जो होता है ना, ये तल्ख जिंदगी को मीठा कर देता है। आप में से जिनके हाथों में कागज़ कलम में लिखिए ज़रा शीन काफ रा, अब इसको पढ़िए शुक्र की सूरत में और इसको पढ़िए शक्कर की सूरत में, एक ही लफ्ज़ है ना, उर्दू में तो और आप हम लगाते भी नहीं, तो उर्दू में लिखा हो तो शक्कर और शुक्र एक ही तरह लिखेंगे ना। तो यहाँ एक जुमला लिख लीजिए, कड़वी चाय को शक्कर मीठा कर देती है, इसी तरह कड़वी तल्ख जिंदगी को शुक्र मीठा कर देता है। शुक्र के बगैर जिंदगी कड़वी, जो भी आपके पास है आपने खुश कोई नहीं होना, जो मर्जी कर लो, तो वो ज्यादा खुशकिस्मत नहीं है जिसके पास बहुत कुछ है, वो खुशकिस्मत है जिसके पास शुक्र ज्यादा है। सूरत फातिहा पढ़ने वाले लोग अगर दिल में शिकवे और गिले रख कर जिए और कहें हमें क्या दिया, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हमने तो पता नहीं ज़िंदगी में कुछ अच्छा लेना ही नहीं, तो मुझे बता सकते हैं कि फिर किसी और को क्या मिलेगा। तो सूरत फातिहा में हम शुक्र सीखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कहिए दिल से, आप सब बोलिए, मैं अभी थोड़ा सा आपको फील कराऊंगी, फिर आप कहें। मैं आपसे पूछती हूँ, आपका क्या हाल है, आपका क्या हाल है, और बोले क्या हाल, आपकी आवाज से पता क्या लगना चाहिए, शहद टपके, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हाल पूछो क्या लगता है, शुक्र है जिस हाल में रखे, तो मैं कहती हूँ ये शुक्र है कि शिकवा। आप कोई सलाम करे ना, दिल खोल के जवाब दिया करे, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपका। हम क्या कहते हैं वालेकुम, ये फसाद है। तो अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना है तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर रब्बिल आलमीन, सारे जहानों का रब मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, बहुत रहम करने वाला, रहमान भी है तो रहीम भी है। सादी सूरह फातिहा सबको आती, मिल के पढ़िए, पढ़िए शब्द सब पढ़े, अब आप देखिए कि आपने सूरत फातिहा पढ़ी, आपका अल्लाह ताला के साथ कोई ताल्लुक जुड़ा, आपको पता ही नहीं चला आपने क्या पढ़ा। तो मैं आपको थोड़ा सा रिकमेंड करूं, पहले तो मैं पूछूंगी जो हमारी प्रिंसिपल हैं, आप सबके पास इन बच्चियों के फ़ोन नंबर्स हैं, व्हाट्सएप कौन कौन यूज़ करता है, माशाल्लाह, ये देखे ना आप, पहले क्या कह रहे थे, फेसबुक पे अकाउंट किस किस का है, माशाल्लाह, यूट्यूब कौन कौन यूज़ करता है, वो तो एक एक साल का बच्चा भी अब करता है। आप अगर, मैं आपको एक आइडिया देती हूँ अगर मुमकिन हो आपके लिए, तो आप इनका एक व्हाट्सएप या कोई और भी बात कर लें बाद में मीडिया टीम से, ग्रुप बनाएं और उसके अंदर इनको इंशाल्लाह एक टॉपिक के साथ चलते, तो थोड़ा सा एक दे, हम आपको भेजें कुछ, जैसे मेरा दिल अब कह रहा है कि हम इनको कुछ दो तीन स्टेप्स में करके सूरत फातिहा की तफसीर भेजें। वेरी गुड, चले आपके लिए कुछ करते हैं, ठीक है, आप उसको सुनिए, आपकी नमाज सीधी हो गई ना तो बाकी सब कुछ भी सीधा हो जाएगा। तो अब मैं इधर सिर्फ सूरह फातिहा पे बात करने नहीं आई आज असल में, वरना मैं आपको उसकी बात करती, लेकिन बस इतनी बात कह दूं, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने के लिए आपको एटलीस्ट सूरह फातिहा का तर्जमा और उसका मफहूम समझ आना चाहिए। तीन आयतों में बंदा अल्लाह की तारीफें करता है, अर रहमान अर रहीम, मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक। मैं जब कभी भी पढ़ती थी शऊर से पहले कि सूरह फातिहा में अल्लाह की तारीफें हैं क्योंकि वह रब्बुल आलमीन है, क्योंकि वह रहमान और रहीम है, तो जब मैं लफ्ज़ मालिक यौमिद्दीन पे आती थी ना, तो मैं कहती थी ये क्या बड़ी बात है, ये कोई खूबी है कि अल्लाह मालिक यौमिद्दीन है, बल्कि इसमें तो नेगेटिव फीलिंग आती है कि क्यों है वो मालिक यौमिद्दीन, बदले के दिन का मालिक, हम तो चाहते हैं कोई ना हमारा मालिक हो, कोई ना हमसे आखिरत में पूछे। लेकिन फिर जब मैंने इसको पढ़ा, मेरे लिए 25-30 दफ़ा सूरह फातिहा, बल्कि इससे भी ज़्यादा पढ़ी हुई है, पढ़ाई हुई है, तो जब मैंने सूरह फातिहा को इन डेप्थ पढ़ा तो फिर मुझे समझ आया कि अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तू ही मालिक यौमिद्दीन है। आप देखिए, आपका अपना टीचर आपके पेपर्स ले, वो ज़्यादा आपको ईजी लगता है, या अगर बोर्ड से कोई और आकर आपके पेपर ले, जी सबको अपने टीचर को पता होता है ये बच्ची सारा साल कैसी रही, बड़ी मेहनत करती है, हो सकता है अल्लाह ना करे पेपर्स के दौरान आप बीमार हो गई, या उस दिन आपका पेपर अच्छा नहीं हुआ, तो वो कहेंगी नहीं ये बच्ची सारा साल पढ़ती थी, बहुत अच्छी थी, आज इसके पेपर में गड़बड़ है, शायद ये बीमार है, शायद ये परेशान है, वो आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखेगी। इसके बरक्स बोर्ड के एग्जाम जब होते हैं तो कई दफ़ा आप देखते हैं रिजल्ट बदल जाते हैं, वजह क्या है, उनको पता ही नहीं आप कौन है, और हो सकता है कोई सिफारिश करके अपने नंबर बढ़वा ले। तो मालिकी यौम दीन होना अल्लाह का हमारे हक में बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमारा हिसाब वही लेगा।